जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, मैं चल पड़ी अब कोई भी रोको ना। मेरी सोच को जब परवाज दी, मैंने खुद को तबला आवाज दी, अब रोको ना। मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मुझे हर विषय मंजूर नहीं, मंजिल भी अब दूर नहीं। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे, मैं ही हूँ मेरा रहनुमा। खुद क्षमा मैं जलाऊंगी इन राहों पे,
शांति। रूहानी क्रांति के सूत्र। तो इस रूहानी क्रांति को लाने के लिए हमने अभी तक चार सूत्र देखे हैं। पहला देखा रूहानी जागृति अवेकनिंग, दूसरा सूत्र देखा रूहानी बेहोशी, बेहोशी के कारण और निवारण, तीसरा देखा रूहानी अथॉरिटी। अगर हम उस रूहानी अथॉरिटी में रहेंगे तो जरूर वो क्रांति लाने में हम सफल होंगे। फिर देखा रूहानी ताकत। तो ये ताकत कैसे आती है वो भी हमने कल देखा, और आज क्या है रूहानी मौज। अभी एक तरफ है क्रांति और एक तरफ है मौज। वैसे देखा जाए तो जो क्रांतिकारी होते हैं दुनिया में वो मौज में होते हैं, नशे में होते हैं, मस्ती में होते हैं। लेकिन ये मौज शब्द जो है अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो मौज माना खाओ पियो मौज करो। मौज शब्द का अर्थ यही बताया गया है अभी तक, लेकिन बाबा ने इस मौज शब्द की परिभाषा हमें अलग बताई है। तो मौज, मौज माना दुनिया के हिसाब से क्या कहेंगे, ऐश। जिस ऐश को हम कहेंगे भोग विलास, कि इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के सुखों में डूबना, ऐश। और ऐसी ऐश का बाद में क्या हो जाता है, ऐश, ऐश राख हो जाती है, विनाश हो जाता है, खाक हो जाते है। तो मुझे जो दो मुरलियां बताई गई थी मौज, तो इसमें पहली मुरली है बिंदु का महत्व। तो ये मुरली है 2 अप्रैल 1984 की मुरली, और बहुत पहले यही मुरली मुझे मिली थी बिंदु के बारे में, बहुत पहले। तो बाबा ने कहा कि मैं आपको विधि बताता हूँ मौज में रहने की। तो मौज दो प्रकार की होती है, आनंद जिसे कहेंगे हम, दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्षणिक होता है कि जिस इंद्रियों द्वारा हम उस आनंद को प्राप्त करते हैं, और दूसरा होता है चिरस्थायी, सदा के लिए। कुछ दिन पहले एक वरदान था, सदा खुश रहो सदा संतुष्ट रहो। तो मुझे किसी ने पूछा कि ये सदा खुश और सदा सदा खुश और सदा संतुष्ट रहो तो इसमें अंतर क्या है, सदा खुश किसे कहेंगे और सदा संतुष्ट किसे कहेंगे। हाँ, जो संतुष्ट है वो खुश है, मतलब खुशी थोड़ी लो स्टेज है क्या, क्या कहेंगे? संतुष्टता स्थिति कहेंगे, और खुशी है कि जो अभी अभी है, अभी अभी नहीं है। खुशी के लिए मानो कोई चीज, कोई और सामने वाला चाहिए। जब हम खुश होते हैं, कोई व्यक्ति मिला, कोई वस्तु मिली, तो हम खुश हुए। लेकिन संतुष्टता वो स्टेज है, कुछ मिले ना मिले, लेकिन सदा वो संतुष्ट, वो स्टेज है। तो सदा खुश कैसे रहे फिर? तो खुशी है, मौज है, आनंद है, उसका हमारे पास सोर्स क्या है? अगर वो अविनाशी सोर्स है, आनंद के प्रदाता, आनंद के सागर से हम वो ले रहे हैं, तो हम कैसे हैं? हमारे पास वो अविनाशी और रूहानी मौज खुशी है। अगर कुछ आधार से हमारे पास वो खुशी है, तो भी वो आधार अगर चला जाए तो खुशी भी गायब हो सकती है। हाँ, जैसे कि कभी कभी वो सूरज की किरणें आंगन को चमका देती है, लेकिन थोड़े देर के बाद बादल आ जाते हैं और वो फिर से अंधेरा आंगन में छा जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह ये जो बादल है बीच बीच में आते हैं, जो सूरज है खुशी का, उसके और हमारे बीच में वो बादल आ जाते हैं। तो वो कौन से बादल है? तो देह, देह के वस्तु, देह के पदार्थ। तो बाबा ने इस मुरली में हमें बताया है ज्योति बिंदु का महत्व। बिंदु का महत्व, बिंदु के हिसाब को अगर हम जानेंगे, इस देह को बीच में से, इस देह रूपी बादल को हटा देंगे, तो कैसे हम मौज में रह सकते हैं? तो ज्योति बिंदु, ज्ञान के सिंधु, शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु बच्चों प्रति बोले। वो भाग्य विधाता आज क्या देख रहे हैं? बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, मिलन मनाने के लिए आए, और हमें एक विधि बता रहे हैं, और वो विधि है बिंदु को सुन, बिंदु को जानना, बिंदु बनना, और उस बिंदु को याद करना। थे भी बिंदु, अभी बिंदु बनने का अभ्यास कर रहे हैं, और वो अभ्यास करके बिंदु की स्टेज में स्थित होके उस बिंदु बाप से क्या करेंगे? मिलन मनाएंगे। तो ये मौज जो शब्द है बाबा ने यूज किया है, तो उसके साथ में दो शब्द लगे हुए हैं कि ब्राह्मण जीवन मौजों की जीवन है, और संगम युग मौजों का युग है। तो बहुत सारी मुरलियों में बाबा ने मौज के बारे में कहा है, और हर मुरली ही है कि जो हमें मौज में लाती है। दुनिया में कहा जाता है कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। लेकिन हमें तो वो मिल गया है, और वो मिलने के बाद भी हम खोज ही रहे हैं, खोज ही रहे हैं। हाँ, मिलने का कहीं भ्रम तो नहीं हुआ है? सचमुच हमने उसको खोजा है, या उसने हमको खोजा है? और अगर हम एक दूसरे को मिले हैं, तो वो मौज गायब क्यों हो जाती है? फिर खोज करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और खोजे तो कहाँ खोजे? गूगल पे खोजे? जहाँ गुम हुआ है वहाँ खोजे? जैसे उस बुढ़िया की कहानी है, एकदम मूनलाइट था, पूर्णिमा का दिन था, और बुढ़िया कुछ खोज रही थी। किसी ने पूछा, क्या खोज रही हो? तो बोलती है, मेरी सुई खो गई है। तो वो भी उसको मदद करता है खोजने में, लेकिन मिलती नहीं। वो पूछता है, आप कहाँ बैठी थी और कहाँ से उठी? तो वो बोली, मैं अंदर बैठी थी। और फिर उसने बोला कि आपकी सुई अंदर खोई है, तो आप बाहर क्यों ढूंढ रहे? तो तो बोलती है यहाँ लाइट है ना, अंदर लाइट नहीं है इसलिए मैं यहाँ खोज रही हूँ। हाँ, तो मौज सदा मौज में रहना है। तो बाबा ने विधि बताई है कि बिंदु बनो, बिंदु के हिसाब को जानो। स्वयं का प्रकाश होगा, आत्मा का प्रकाश होगा, तब वो लाइट होंगी, तभी हम मौज में रह सकते हैं। तो बाबा ने आगे इस मुरली में कहा है, बिंदु का हिसाब 10 से 100, 100 से 1000। तो हमारा जो बल्ब है उसका क्या पावर है, क्या वोल्टेज है, कौन सी वोल्टेज का बल्ब है? 10 का है, 100 का है, 1000 वोल्टेज का है। जितना वो लाइट एनलाइटमेंट यहाँ होंगी उतना वो चीज़ें क्लियर और स्पष्ट होंगी। फिर ये जो मौज शब्द बाबा ने यूज़ किया है, खाओ पियो मौज करो, मौजों का युग है, ब्राह्मण जीवन मौज मौज की है, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हाँ, तो ये कई अलग अलग बातें बाबा ने बताई हुई है। तो फ्रिक्वेंटली देखा कि बाबा ने इसको संबंध के साथ जोड़ा है, संबंध। तो इस मुरली में भी बाबा ने कहा कि सदा मौज में न रहने का कारण क्या है, क्यों मौज में नहीं रह पाते? क्योंकि बाबा से बच्चे मतलबी संबंध जोड़ते हैं। जब कोई एक हलचल का समय आता है, जब विपदा आती है, जब टॉपिक मिलता है, तब बाबा जितना जोर से याद आता है बाबा, हाँ बाबा अब आप ही कुछ करो, मैं बैठ जाऊंगा आप बोलना, बस बाबा आप ही हो। ऐसे जैसे कि दोनों हाथ से धोती को पकड़े हुए, बाबा बस आप ही हो। और जैसे ही क्लास पूरा हुआ, हाँ एकदम रिलैक्स हो जाते। तो वो जो बाबा ने कहा कि मतलब ही है, बच्चे क्या करते हैं, मतलब से संबंध जोड़ते हैं। स्थूल लौकिक में भी हम देखो, किसी से कुछ काम, हाँ ये भी बाबा, मेरे बाबा आ जाओ, हाँ बाबा ने कहा है जब भी मुसीबत आ जाती है तो मुझे पुकारो, मैं आ जाऊंगा। तो हाँ, हुजूर हाजिर है। तो मतलब बाबा ने वो विधि सिखाई है और हम उसका यूज करते हैं, लेकिन जहाँ तेरा मेरा है, जहाँ तेरा मेरा है, तो जहाँ संबंध नहीं है तो वहाँ बंधन लगता है। लौकिक में भी देखो, कोई किसी से काम कराना है तो वो विधि अगर प्यार की है, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, प्यार से हर चीज हो जाती है। लेकिन आप उसको दिखाना जा रहे हो कि नहीं, यू आर माई सर्वेंट, तुम सेवाधारी हो और मैं कुछ हूँ, तो वो बात कभी नहीं बनेगी। उसके लिए प्यार होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए। तो बाबा ने कहा संबंध बनाओ, अगर मेरा तेरा है तो उसमें यारी नहीं है। तो ऐसे ही एक राजकुमार घूमने के लिए, मतलब शिकार के लिए निकल पड़ता है और जंगल में वो भटक जाता है, अपने सैनिकों से भी भटक जाता है, और वो इतना दूर दूर कहीं चला जाता है, भूख प्यास से वो बिल्कुल मूर्छित हो पड़ता है। तो फिर वही जंगल में रहने वाला एक चरवाहा उसको अपने कुटिया में लेके जाता है। जब उस राजकुमार की होश में आता है और वो नजरें खोल के उठा के देखता है, तो उसको पता चलता है कि मुझे इस भील ने, इस चरवाहे ने मुझे क्या किया है, बचाया है। तो राजकुमार उसके ऊपर बहुत खुश होता है और राजकुमार बोलता है कि आज से तुम मेरे दोस्त, तुम मेरे साथ चलो। अब राज हट और राज आज्ञा के सामने वो चरवा भी तैयार हो जाता है चलो, लेकिन वो उनको बोलता है कि देखो मैं आपके साथ आऊँगा, लेकिन फिर आपको दोस्ती निभानी पड़ेगी, उसमें कुछ खोट नजर आई तो मैं फिर अपने घर वापस चलाऊँगा। तो राजकुमार उसकी बात मानता है और वो निकल पड़ते हैं राजधानी की ओर। जैसे राजकुमार ने प्रॉमिस किया था बिल्कुल उसी तरह वो उस चरवाहे को अपने साथ रखता है, अपने कमरे में, अपने महल में, अपने जैसे ड्रेस, अपने जैसे अलंकार, अपने जैसा सब कुछ उसको दे देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रात में उस चरवाहे को कुछ काम याद आ जाता है और वो उठता है, और जैसे ही वो अपना ड्रेस पहनने जाता है तो राजकुमार की आवाज़ आती है कि अरे वो ड्रेस तो मेरा है, आपका बाजू में है, अब सिलवाया तो राजकुमार ने ही है अपने दोस्त के लिए और टंगे भी एक साथ है, लेकिन वो नींद में भी अपने चरवाहे दोस्त को बोल देता है कि अरे वो तो मेरा है। तो चरवा बिगड़ जाता है, बोलता है ये तेरा मेरा ये कहाँ से आ गया, मतलब आपके अंदर आज भी मैं जो हूँ वो चरवाहा ही हूँ, तो आज से अपनी यारी खत्म, जहाँ तेरा मेरा है वहाँ यारी नहीं होती है। तो बाबा भी वही बता रहे कि ये जो है सब कुछ तेरा एक बार कह दिया और फिर वापस आप ले लेते हो, ये मेरा वो मेरा करते हो, तो फिर वहाँ ये यारी ये दोस्ती ये संबंध रहता ही नहीं। तो जो दूसरी मुरली त्रिदेव रचयिता वाली, उसमें भी बाबा ने कहा था, 21 दिसंबर की ये मुरली है 89 की, तो इसमें भी बाबा ने तीन संबंध बताए हैं, बाप टीचर और सतगुरु, दाता विधाता और वरदाता के रूप में बाबा ने इसका बताया। तो दाता रूप में क्या देता है, विधाता रूप में हमें कैसे गॉडली स्टूडेंट बनाया, भगवान का विद्यार्थी बनाया और क्या दिया, और फिर दाता बन करके सतगुरु के रूप में उसने हमें कौन सा वरदान दिया और कौन से वरदानों के प्राप्त बनाया। परमात्मा से तो वरदान मिला, शुभ भावना शुभ कामना रूपी आशीर्वाद हमें ब्राह्मण परिवार में भी कैसे मिलती है वो बाबा ने बताया। तो जितना हम संबंध जोड़ेंगे बाबा से उतना हम क्या रह सकते हैं, मौज में रह सकते हैं। तो मौज नहीं है मतलब क्या है, बोझ है आत्मा के ऊपर, पुराने बोझ है, पुराने संस्कारों का, पुराने स्वभाव का, पुरानी दुनिया के उन संबंधों का, उन बंधनों का बोझ है, बीमारियों का कहीं ना कहीं बोझ है। इसलिए हम क्या नहीं रह पाते, सदा मौज में नहीं रह पाते, सदा खुश नहीं रह पाते। हाँ, बच्चे नहीं बनते हैं, तो बच्चा बनना मना ही मौज में रहना। तो हर आयु की एक अपनी मौज है, बच्चा बनने में भी मौज है तो बुढ़ा बनने में भी मौज है, हर वर्ग में अपनी मौज है, स्टूडेंट लाइफ में हो या हर फील्ड में, हर एक की मौज अपनी अपनी है। अगर जगह चेंज कर दी जाए तो वो क्या होने लगता है, बोझ लगने लगता है। तो मौज है मतलब बोझ नहीं है, तो हर एक की मौज अपनी अपनी है। हाँ, तो मौज में रहो और मौज में लाओ, ये बाबा ने हमें सिखाया। यहाँ सिर्फ खाओ पियो और मौज में रहो ये बाबा ने नहीं सिखाया हमें, लेकिन खिलाओ पिलाओ और यारी निभाओ, सिर्फ बाप के साथ ही नहीं, सिर्फ बाप के साथ ही नहीं, लेकिन संबंध जो है हमारे, ये रूहानी संबंध है, अलौकिक संबंध है, सिर्फ यही संबंध नहीं, दुनिया के साथ भी हमें तोड़ निभानी है, संबंध निभाने हैं, तो उसमें भी क्या करना है, सिर्फ खुद ही खाना पीना नहीं है लेकिन उनको भी खिलाना और पिलाना है। लेकिन क्या, पिज्जा नहीं उस ज्ञान के खजाने को लुटाना है, ज्ञान अमृत हमें पिलाना है। तो मौज में रहने के लिए खुद भी रहना पड़ेगा और औरों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। लेकिन आज की दुनिया में देखा जाए तो मौज कब मिलती है, जब दूसरा दुखी होता है, जब चलते चलते कोई गिर जाता है तो इतनी खुशी के फुवारे फूटते हैं अंदर, क्या देखो कैसे गिरा, फिर उसका वर्णन करेंगे और फिर वो इरिटेट हो रहा है सामने वाला, लेकिन बार बार उसकी उसके कुछ गलती हुई हो, उससे कुछ अनजानेपन में कुछ हो गया हो, तो उसको बार बार दुनिया के सामने दोहरा दोहरा के हंसेंगे, तो ये रूहानियत नहीं है। और ऊपर से फिर अगर सामने वाला बिगड़ जाए तो फिर उसके ऊपर ज्ञान के अस्त्र शस्त्र चलाएंगे। हाँ बताओ बाबा ने क्या कहा आज मुरली में, पांच बातें सुनाओ। अरे पांच बातें क्या, 100 बातें आपको याद है तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया क्या सामने वाले को पिन लगाने का, आपको क्या लाइसेंस मिल गया क्या परमिशन मिल गई क्या? आपको मुरली की 10 बातें याद है तो आपको क्या लाइसेंस मिल गया सामने वाले को आप पिंच करो? ये कहा कि रूहानियत है? हाँ ये कहा कि मौज है? ये कहा कि रमणीकता है? इसको रमणीकता नहीं कहेंगे। सामने वाले को आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, खुद की उन्नति में हाँ जरूरत ही नहीं है समय और स्थान और व्यक्ति, सामने वाला देखना है ना, सामने वाले को देखना है, सामने वाला कौन सी परिस्थिति में है, क्या सिचुएशन, और आप अपनी मौज में हो उसको मौज नहीं कहेंगे, इसको तो क्या कहेंगे अपनी मौज को मानो कि वो कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगा रहा है। फिर आगे मन की मौज और श्रीमत की मौज, कुछ लोग हैं कि वो मन मौजी होते हैं, अपनी मन से ही चलते रहते, हाँ जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं करूँ, लेकिन श्रीमत मिली हुई है हर बात के, हमें क्या मिली हुई है, श्रीमत मिली हुई है, उस श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत में और मर्यादा के अंदर रहते हुए अगर हम मौज में हैं तो उसे क्या कहेंगे, मौज कहेंगे। फिर आजकल साधनों के द्वारा, अभी हमने इंग्लिश क्लास में भी सुना कि साधनों के द्वारा जो मौज प्राप्त करना चाहते और अगर वो नहीं मिलेंगी तो वो विक्षिप्त हो जाता है व्यक्ति। तो ये जो मौज है, भल हम निकले हैं अच्छे कुछ देखने के लिए तो बीच में आ जाता है विज्ञापन, ये जो विज्ञापन की दुनिया है, ये दुनिया ही विज्ञापन की है, हर कोई विज्ञापन करता रहता है, एडवर्टाइज करता रहता है, बात कुछ होती है और दिखाया कुछ और जाता है तो जैसे कि दिखाया जाता है विज्ञापन नमक का कि फलाना नमक खाओ उसमें आयोडीन है और उससे बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, और उसमें दिखाया जाता है कि कैसे एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा कैसे कलेक्टर बन जाता है, कैसे वो लाल डीए की गाड़ी में आता है और अपनी माँ को लेके जाता है। बस लोगों के मन में इतना उस नमक के प्रति आकर्षण हो जाता है, बस यही वाला नमक खाना है और मुझे कलेक्टर बन। तो ये जो आकर्षण है, दुनियावी आकर्षण, जो क्षणिक आकर्षण है, जो हमें उस स्थायी खुशी को और बढ़ने नहीं देते और हमें उस मौज में रहने नहीं देते, तो संबंध, बाबा से संबंध जोड़ना है। बाप, टीचर और सदगुरु के अलावा भी हमारे पास लंबी लिस्ट है संबंधों की, हाँ दोस्ती, अभी हमने देखा कि हाँ, तो वही मौज क्यों आएंगी कि हम देख रहे हैं, हाँ तो इसका इसका उत्तर बाबा ने दिया है जो सेकंड मुरली है त्रिदेव की। तो बाबा ने कहा कि कभी कभी क्या हो जाता है, फ्लू की बीमारी लग जाती है, तो बाबा ने फ्लू की बीमारी के बारे में बताया, जैसे उधर फ्लू होता है तो क्या होता है, शेकिंग होती है, हलचल होती है, तो बाबा ने कहा कि यहाँ भी शेकिंग होती है, हलचल होती है, हलचल दो प्रकार की, एक तो उसको बहुत ठंड लगती है या तो फिर टेम्परेचर चढ़ जाता है, तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या हो जाता है, माथा खिसक जाता है, टेम्परेचर चढ़ जाता है, कान गर्म हो जाते हैं, कोई कुछ बोला, अरे मुझे कहा, इसने कहा, क्यों कहा, अंदर में एक आग भड़कती है। फिर दूसरा लक्षण बाबा ने फ्लू का बताया कि मुख कड़वा हो जाता है, उस दुनिया में कुछ टेस्ट नहीं आता है, कुछ भी खाए कड़वा कड़वा लगता है। तो बाबा ने कहा, यहां भी मुख से कड़वे बोल निकलते, मुझे ऐसे कहा, फिर सामने वाले को क्या क्या उत्तर देना है, कब देना है, उसका प्लानिंग, और वो सही जगह चुनी जाती है। हाँ, नीरस बन जाता। फिर फ्लू में क्या होता है, क्या होता है फ्लू में? हाँ, कमजोरी आती है। तो यहां भी कमजोरी ऐसी आ जाती है, और उसमें कोई दवा रूप में कोई ज्ञान की पॉइंट सुना है, तो फिर रिएक्शन हो जाती है। फ्लू में जब बहुत बुखार होता है तब इंजेक्शन नहीं दिया जाता। आशीष भाई चेक करते हैं, हाँ नहीं, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद उसको क्या किया जाता है, पोस्टपोन। इसलिए उस समय ज्ञान नहीं सुनाना होता है। जिसको ये सब नॉलेज है उसको आप ज्ञान का डोज चढ़ा हो तो फिर वो आपके ऊपर रिएक्शन निकलेगी, आपकी भी मौज निकल जाएंगी फिर। तो मौज में रहना है तो इस फ्लू से बचना पड़ेगा। हाँ, उससे संबंधित क्लास भेजे तो और पारा चढ़ जाएगा फिर। और पारा चढ़ जाएगा तो हाँ, ये सेलेक्टेड पॉइंट जो है ना, हाँ ये बस बाबा ने खास आपके लिए ही चलाई हुई है। तो ये बताया बाबा ने फ्लू के बारे में, जैसे फ्लू होता है और क्या क्या होता है, फीलिंग में आ जाते हैं तो मौज गायब हो जाती है। तो इस फ्लू से बचने के लिए बाबा ने कहा, इस मेहनत से बचने के लिए क्या करो कि आपको बाबा ने जो शुद्ध संकल्प दिए हुए हैं उस शुद्ध संकल्पों को दोहराओ। तो बाबा ने हमें शुद्ध फीलिंग जो दी है, शुद्ध संकल्प जो दिए हैं, जो वरदान दिए हैं, उस वरदानों में रहो। कौन से दिए हैं बाबा ने शुद्ध फीलिंग? कि मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, कोटों में कोई आत्मा हूं, इसको फील करना है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं वही सिकलिधि आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, मैं देव आत्मा हूं, सदा मौज में रहने वाली महान आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा हूं, विशेष पार्टधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में आप रहेंगे तो बाबा ने कहा ये फ्लू आपको लगेगा ही नहीं। इस फीलिंग में, इस शुद्ध फीलिंग में रहेंगे तो ये फ्लू आपको लगेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, कईयों को कितना भी कहा कि मौज में रहो, तो बाबा ने कहा वो 63 जन्मों की आदत लगी हुई है कि मेहनत करने की, उसको भल एसी दिया है, कुर्सी दी है, लेकिन उसको वो पसंद नहीं आएगा, उसको मेहनत ही चाहिए। वो बोलेगा नहीं, मुझे कुछ काम दो, मुझे कुछ काम दो। हाँ, कुर्सी नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा, तो अभी देखो आपको मौज में रहना है, और ये मौज की जो संस्कार है 21 जन्मों के लिए आपको मौज मिलने वाली है। हाँ, बाबा ने कहा भले दूसरे मेहनत करते रहे लेकिन आप मौज में रहो। नहीं, वो भी कला होती है, हर किसी के पास नहीं होती, दूसरों से काम कराने की कला, बड़ी युक्तियां होती है। जैसे दुनिया में डिग्री होती है, MBA है करते हैं, BBA करते हैं, वो एक कला सिखाते हैं उसमें कि दूसरों के से काम कैसे करवाना है, वर्कर्स से, सेल्समैन से, तो वो कला ये सीख ली है। लेकिन उस बातों में नहीं, मेहनत और बाबा ने मोहब्बत की बात सिखाई। मोहब्बत है, प्यार है, तो मेहनत लगेगी ही नहीं, संबंध है तो बंधन लगेगा ही नहीं। अगर आप किसी को सर्वेंट के तौर पर, ऐ तुमको ये करना है, तो वो क्यों करेगा? हाँ, संबंध आप निभाओ, प्यार का संबंध जोड़ो, तो आपको कहने की भी आवश्यकता नहीं। वो तो बाबा रोज सिखा रहा है, वो तो बाबा रोज सिखा रहा है। फिर ये मुरली यहाँ पूरी हुई, लेकिन आगे एक राजस्थान और पंजाब ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं, तो मुझे ये बात अच्छी लगी। तो बाबा ने कहा कि होली अर्थात सदा पवित्र, पवित्रता की शक्ति क्या करती है, अपवित्रता को सेकंड में भगा देती है, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को आपको परिवर्तन करना है, पवित्रता की शक्ति कितनी महान है यह जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संसार संपूर्ण हो जाएगा तो आपके श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। जब दुनिया में हाहाकार होगा, गंदगी बढ़ेगी, तब बाबा ने कहा आपका एक संकल्प, आपकी अग्नि क्या कर देगा, आपकी योग की ज्वाला एक सेकंड में भस्म कर देगा। अंत में ऐसे धीरे धीरे सेवा नहीं होंगी, सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। तो सच्ची मौज किस में है? पवित्रता में। तो बाबा ने कहा अगर वो शक्ति को आपने इतना धारण कर लिया है तो ये टाइम का जो बीच में लगता है गैप वो नहीं लगेगा, सोचा और हुआ, इसको कहेंगे विहंग मार्ग की सेवा। और पंजाब वालों के साथ बाबा बात कर रहे हैं तो बाबा ने कहा अभी अभी जो समय चल रहा है उसके लिए बाबा ने जैसे कि 84 में ही भविष्यवाणी की थी, तो बाबा ने यहाँ पर कहा है अभी तो व्यक्तियों को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात पीछे है, तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो, क्योंकि सरकमटांस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे, एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। तो बाबा ने कहा घर घर सेवा केंद्र बन जाए, शायद ये मुलाकात अंतिम मुलाकात भी हो सकती है। तो बाबा ने कहा है ऐसा समय आएगा और वो आज आ चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हमें मौज में रहने के लिए बाबा ने विधि कब बताई हुई है? 89 में, उसके पहले भी बताई हुई है, नहीं हुआ था ना, जुलाई में हुआ था, यह है 21-12 की। और मैं हाँ, और पता नहीं, लेकिन मैं तो जुलाई में ही जन्म ले चुका था 89 में, इसलिए मैं था इस मुरली के समय। तो हमने गीत भी कई बार सुनाए हैं क्लास में, मौजों के दिन हो मिलन की हो रातें, तू मात पिता बन साजन सखा बन, वो सुना। तो बाबा ने कहा है ना वो भले रहे लेकिन आपकी मौज इतनी पॉजिटिव वाली हो, इस मौज के आगे जो शब्द लगा है ना, इसीलिए आज का जो टॉपिक है अलौकिक रूहानी मौज है। सिर्फ मौज नहीं है, सिर्फ मौज है ना तो फिर सामने वाला इरिटेट हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, हाईलाइट बन जाएंगी, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएंगी। हाँ, ऐसे कभी हुआ था, एक मिनिस्टर थे, वो जल विभाग के मिनिस्टर थे, तो वो गए अपने क्षेत्र में और पता नहीं उन्होंने नया मोबाइल लिया होगा और उन्होंने सेल्फी खींची और वो मीडिया में वायरल हो गई, तो फिर उनको अपना पद छोड़ना पड़ा क्योंकि वो मौज उनके ऊपर भारी पड़ गई, क्योंकि वो देखने गए थे सूखाग्रस्त इलाके को, वहां के लोगों को सांत्वना देने के लिए कि हाँ हम आप तक पानी पहुंचा देंगे, लेकिन वो अपनी मौज को रोक नहीं पाए, सेल्फी ले बैठे। तो ये जो मौज है समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति देखते हुए, और ये मौज आंतरिक मौज बाबा हमें बता रहे, न कि ही करते रहना ऊपर से, आंतरिक मौज, आंतरिक मौज, सामने वाले का मूड देखो ना, ही करते रहेंगे किसी के सामने जाके तो फिर वो अच्छे से आपको खरी खोटी सुना देगा और फिर आपकी मौज भी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो बाबा ने हमें अंतर्मुखता वाली रूहानी और अलौकिक मौज सिखाई है, न कि ऊपर ऊपर से। हाँ, बैलेंस मतलब मौज में रहना ही है, हर हाल में मौज में रहना है हमें, लेकिन उसका जो रूप है वो अंदर वाला हो, बाह्य न हो। तो बाह्य मौज और अंदर की मौज। बाह्य मौज के लिए जैसे कि यहाँ ओठों के ऊपर शहद की एक बूंद रखी जाए, उसको हमने ले लिया अंदर, लेकिन अब अंदर से मन प्यासा है, जीवा को चाहिए और शहद, लेकिन वो शहद का छत्ता अंदर ही बना रखा है। मैंने रोज ज्ञान की एक 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 पॉइंट इकट्ठी कर रखी है, वो छत्ता अंदर ही है, तो बाहर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं। तो मैं कौन हूं? मधु बन निवासी हूं। ऐसे ऐसे छत्ते पे मैं बैठा हुआ हूं जहां सदा मौज ही मौज है। तो ऐसी मौज में रहने के लिए मुझे तन से नहीं मन से सरेंडर होना पड़ेगा, जो अभी हमने इंग्लिश पैरा में सुना। तो ऐसे मौज में रहने वाले, सदा मौज में रहने वाले बच्चों को बाबा याद प्यार देते हैं, नमस्ते करते हैं। और बाबा ने इसमें एक और पॉइंट भी बताई कि साक्षी भी हो जाओ, साक्षी भी रहना सीखो। भले वो मौज लेना ले रहा है ना सामने वाला, लेने दो उसकी क्षणिक मौज, उसको लेने दो, आप स्थाई मौज में रहो, आपको इरिटेट होने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, ओम शांति।